इंसान जब भी कमाई करता है तो वो अपने भविष्य की चिंता को रख कर कमाई करता है। इंसान अपनी तिनका तिनका जोड़ता है ताकि अपने जीवन को आर्थिक मोर्चे पर सुरक्षित बना सके। इस प्रक्रिया को हम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, यानी कि निवेश करना। आज हम आपको निवेश किस किस क्षेत्र में कर सकते हैं और कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस तरह के मुद्दों पर प्रारंभिक जानकारी देने जा रहे हैं। आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार के निवेश संबंधी यानी कि इन्वेस्टमेंट संबंधी कदम लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद जरूर लें। आप अपने अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेने के बाद ही कोई ठोस कदम उठाइए। इस क्षेत्र में प्रारंभिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री जिग्नेश राज जी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इस क्षेत्र में 10 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं। जिग्नेश जी, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है।
धन्यवाद हरिता जी, मुझे आपके प्रोग्राम पे अवसर मिला और मैं आप सभी श्रोताजनों को नमस्कार बोलूंगा अपनी तरफ से।
जिग्नेश जी, जानना चाहेंगे कि एक आम इंसान के पास कौन कौन से प्रकार के इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल है, विकल्प उपलब्ध हैं?
हरिता जी, ऐसे तो विकल्प तो कई सारे होते हैं, बट अगर कोई आदमी स्टार्टिंग कर रहा हो इन्वेस्टमेंट की लाइन की तरफ, बेसिक ऑप्शंस में बोल रहा हूँ कि जो उनके साथ अवेलेबल है, जैसे कि पैसा बैंक में रखना जहाँ पे वो इंटरेस्ट कमा सकते हैं, वो थोड़ा रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है तो रिटर्न भी थोड़ा कम ही मिलता है उसके अंदर। और थोड़ा और अगर उसमें आगे बढ़ते हैं तो फिर आप थोड़े लंबे टाइम के लिए टर्म डिपॉजिट कर सकते हैं, तो उसमें जो नॉर्मल इंटरेस्ट मिलता है बैंक से उससे ज्यादा मिलता है, बट आपका पैसा थोड़ा लंबे टाइम के लिए होल्ड रहता है। थर्ड ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रॉपर्टी में जा सकते हो, बट प्रॉपर्टी अगेन वो थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और प्रॉपर्टी के दो बेनिफिट है कि आपको एक रेंटल इनकम भी मिल सकती है, प्लस आपको ग्रोथ भी मिलता है रेंटल एसेट्स में, बट अगेन थोड़ा उसमें ज्यादा रिस्क रहता है बिकॉज काफी सारी कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है प्रॉपर्टी बाय करने में, जैसे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया अगर आपने लोन लिया है, स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ेगी, रिपेयर्स और मेंटेनेंस रेगुलरली रहेंगे, इस हिसाब से प्रॉपर्टी थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, बट हाँ रेट ऑफ रिटर्न भी उसका अच्छा मिलेगा बिकॉज रिस्क थोड़ा ज्यादा ले रहे हो। और नॉर्मली फोर्थ ऑप्शन जो बोलते हैं हम, बोलते हैं इक्विटीज या स्टॉक्स या शेयर्स। नॉर्मली लोग जो बड़ी बड़ी कंपनीज है या जो भी स्टॉक लिस्टेड कंपनीज है उसमें लोग डायरेक्टली शेयर बाय कर सकते हैं, वो सबसे ज्यादा रिस्की गिना जाता है जो इन चारों ऑप्शंस में मैंने जो बताया उसमें, बिकॉज ऑब्वियसली कोई कंपनी अगर डूब जाती है तो उसकी शेयर वैल्यू जीरो हो सकती है, उसमें रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है। शेयर्स में भी दो फायदे इसलिए है, जैसे प्रॉपर्टी में रेंट मिलता है, शेयर्स में डिविडेंड मिलता है, और प्लस शेयर्स अगर अच्छे चल रहे हैं तो उसमें ग्रोथ भी मिलता है। के अलावा भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं, जैसे कि कमोडिटीज बोल रहे हो या फिर आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे प्रेशियस मेटल्स बोल रहे हो, करेंसी में लोग ट्रेड करते हैं फॉरेक्स में, या फिर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट देख लो जैसे कि ऑप्शंस है, फ्यूचर्स है, वॉरंट्स है, बहुत ही स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है और उन्हीं लोगों को उसमें जाना चाहिए जिनको उनकी समझ है या जिनके पास उनके लिए टाइम है या दे हैव सम अदर रिसोर्सेज जो आप यूज कर सकते हैं बिकॉज दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड।
जो आपने पहले के तीन ऑप्शंस बताए वो तो बहुत ही जाने माने हैं और हमारे बहुत सारे श्रोता हैं, हम खुद हैं कि जो उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बात आती है स्टॉक की, शेयर्स की। कितना रिस्की है, कितना खतरा हो सकता है जब इंसान खुद अपने हिसाब से किसी कंपनी का स्टॉक पसंद करता है या उसमें निवेश करता है? तो
स्टॉक मार्केट ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया का स्टॉक मार्केट देख ले एग्जांपल, तो गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ काफी सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट है। जब भी कोई आदमी सोचेगा कि मुझे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो पहले तो उनको जो भी कंपनी उनके इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल में सूट करती है अगर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको उनकी कंपनी का पूरा रिसर्च करना चाहिए कि ये कंपनी क्या कर रही है, उनकी मैनेजमेंट टीम ने पीछे क्या किया है, आगे का क्या प्लान है, कंपनी के बैलेंस शीट को स्टडी करें, कंपनी के रेवेन्यूज को स्टडी करें और फिर उनको लगे कि हाँ ये कुछ अच्छा कर सकती है, देन दे कैन थिंक अबाउट इट। बिकॉज उसमें क्या है कि अगर आप उसके आपके पास सिर्फ नॉलेज नहीं है, आपके पास अगर टाइम नहीं है तो फिर आप थोड़ा गैम्बलिंग जैसा मैं बोलूंगा कि आपने बस कोई भी चेरी पिक करने के लिए आपने कोई स्टॉक ट्रिक कर लिया विदाउट आपको मालूम नहीं होगा कि इसका क्या होने वाला है फ्यूचर में। सो वेरी ग्रेट चांस कि आपको उसमें लॉस हो सकता है बिकॉज आपको अवेयरनेस नहीं है कि वो कंपनी कहाँ जा रही है। इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला उसूल यही है कि आपका पैसा ग्रो करना चाहिए और आपको उसमें से कोई रिटर्न मिलना चाहिए। अगर आप राइट तरीके से उस इन्वेस्ट नहीं करोगे तो वेरी गुड चांस कि वो पैसा आपका डूब जाएगा या आपको उसमें लॉस हो जाएगा। आपको पैसा कमाना है तो पैसा डालना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस पे चीज में डाल रहे हो तो उसको सोच समझ के डालो। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है या आपके साथ कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट है तो आप उसके साथ जुड़ो, उससे थोड़ी असिस्टेंस लो, एडवाइस लो और आपके अपने रिस्क के हिसाब से, अपने इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करना चालू करो। खुद कर रहे हो तो ब्लू चिप कंपनीज की तरफ ही डालो, या आपको इन जनरल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है तो फिर आप किसी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ जुड़ के काम कर सकते हो।
जैसे कि आपने अभी बताया कि आपको डाइवर्सिफाइड यानी कि अलग अलग क्षेत्र में निवेश कर अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो आप फिनेंशियल एडवाइजर के पास जाएं, लेकिन क्या खुद के हिसाब से अपने आप के बलबूते पर ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है?
डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो डेफिनेटली बना सकते हैं खुद के हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर खुद के करना है तो फिर आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा अलग अलग क्षेत्रों में जहां आप चाहते हो निवेश करना, वहां उस क्षेत्र में कौन सी कंपनियां अच्छी है या फिर कौन से एसेट्स अच्छे हैं। एग्जांपल अगर आपको अपने लिए प्रॉपर्टी में डालना है तो प्रॉपर्टी में अगर आपको सिडनी में ही डालना है देन ऑल्सो देयर इज लॉट ऑफ ऑप्शंस कि कौन से सबब में पैसा लगाना है। ऐसा नहीं कि खाली सिडनी में काफी सैकड़ों सबब्स है तो उसमें कौन सा वाला चूज करना, दैट इज इम्पोर्टेंट। मेरा कहने का मतलब यही है कि कुछ भी अगर आप करोगे तो उसके लिए आपको एक लॉजिकल वो होना चाहिए कि व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग इन दैट एरिया, प्लस आपके साथ उसका रिसर्च होना चाहिए कि विच शोज कि अगर यहाँ पैसा डालोगे तो वो पैसा आपका लॉस ना हो के आपको उसमें ग्रोथ मिलेगा। डाइवर्सिफाई का और मेन एडवांटेज वही रहेगा कि अगर लेट्स से आज प्रॉपर्टी की प्राइसेस अगर कम होने वाली है तो होपफुली लेट्स से शेयर मार्केट बढ़ेगा तो क्या एक कम हो रहा है एक ज्यादा होगा तो फिर क्या आपका एक पोर्टफोलियो में एसेट क्लास कम हो रहा है और दूसरा पोर्टफोलियो का एसेट क्लास बढ़ रहा है, तो इट विल बैलेंस ऑफ। आप खुद भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे, उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा और आपको काफी सारी स्टडी करनी पड़ेगी और फिर ही आप उस टाइम डिसीजन ले पाओगे मैं जो इन्वेस्टमेंट करूंगा दैट इज गोइंग टू बी गुड और नॉट।
जिग्नेश जी, और एक बात सुनते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भारत आजकल बढ़ती तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, अर्थतंत्र है, अगर वहां पर निवेश किया तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपकी टिप्पणी क्या होगी, इसमें क्या फायदा है क्या नुकसान है?
हरिता जी, मैं इतना डेफिनेटली बोलूंगा कि यस, भारत आज एक काफी आगे बढ़ रहा हुआ देश है और फ्यूचर से काफी ब्राइट लग रहा है, सो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी काफी अच्छे हो सकते हैं। बट जैसे ऑस्ट्रेलिया में इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है, भारत में उतनी इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल नहीं है। सो अगर आप भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो दो तीन चीजों का जरूर ध्यान रखो। पहले एक कोई आप अपने राइट एडवाइजर को वहाँ चुनो या फिर राइट सोर्स को चुनो जो आपको उस पर्टिकुलर एसेट क्लास में जहाँ आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके हिसाब उसके बारे में पूरी पूरी जानकारी दे। दूसरा, अगर इन्वेस्ट करना है तो उसके साथ आप भारत की करेंसी अलग है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी अलग है, तो उसमें करेंसी एक्सचेंज का भी रिस्क रहता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया बट भारत का रुपया डाउन हो गया ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के सामने तो भी आप जो इन्वेस्टमेंट किया है इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू एनी गुड रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन करेंसी रिस्क ऑपोजिट भी डायरेक्शन में काम करता है, अगर इन्वेस्ट किया हुआ है और आपका इंडियन रुपी स्ट्रांग हो गया है तो आपको डबल फायदा भी हो सकता है उसके अंदर। तीसरा, वहाँ आपके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उससे भी एक बार सलाह मशवरा कर लो, बिकॉज उस इन्वेस्टमेंट अगर आप जब भी उसको आप कैश करोगे तो आपको वहाँ भी टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और ऑस्ट्रेलिया में भी टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे।
जिग्नेश जी, आने वाले कार्यक्रमों में हम आपसे अलग अलग विषयों पर ज्यादा तार से जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल SBS हिंदी से बात करने के लिए शुक्रिया।
थैंक यू वेरी मच।